ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परमात्मा उसी समय प्रकट हो गए, यानी वो ये पुकार के अचेत हो गई, हे परमात्मा, हे गुरुजी, मेरी रक्षा करो, मैं मार दी काल ने, भूल बन गई मेरे पे, मुझे मेरा मंत्र याद नहीं रहा। परमात्मा वहां प्रकट हो गए, राजा भी आ गया, सचमुच तो मरे गई। तो परमात्मा ने एक मंत्र सा बोला, लीला कर करी थी, बिरहुली मंत्र बोलते हैं उसको, और वो विस्तार दिया। लड़की वराणी जीवित होगी, फूली नहीं समावे, कुत्ती मैं भागी भागी फिर आए, मेरे महाराज आपने मेरी जान बख्श दी। परमात्मा ने कहा, बेटी आज तेरी 40 वर्ष की उम्र है, आज तेरा फाइनल था, तेरे आगे आयु नहीं है मनुष्य की, अब मेरे हाथ में है ये तेरी आयु, जब तक तू चाहेगी तब तक तुझे जीवन दूंगा, पर भक्ति करती रहना। 80 वर्ष की उम्र होगी, बुढ़िया होगी, कति नाड़ लल्लाएगी, तब परमात्मा आए कि बोल बेटी, अब क्या तेरा सतलोक चलने की इच्छा है? अकां जी तैयार बैठी हूं, कभी ले चलो प्रभु, तेरा किसी में ममता तो नहीं है, पोते में, पोती में, दोते में, ज्योति में, कार या कोठी में, पति में, बेटे में, जो इतनी भी इच्छा रहेगी ना, तू वहां नहीं जा सकेगी। अंदरमती कहने लगी, भगवान आपने ज्ञान ही सा दे रखा है, कति निरिच्छा कर रखी हूं, और जो इच्छा रहेगी, जन्म होगा, जन्म होगा, मेरे कुत्ती अपने का आगे कड़मे मारेंगे लठिए। तो परमात्मा बोले, बेटी बात तो तेरी सारी सच्ची है, ठीक है, भक्ति कर, तुझे ले चलूंगा मैं अपने हिसाब से। एक दो दिन के बाद परमात्मा आए, रानी को दिखाई दे रहे, उनका शरीर से निकाल लेंगे सूक्ष्म शरीर में। अच्छा, उससे पहले रानी बार बार कहा करती थी कि हे गुरुदेव, मेरे पति ने समझा दो। उस बीच बीच में परमात्मा को रानी कहा करती थी इंद्रमती, मेरे पति ने समझा दो, ये बोला आदमी है अच्छी आत्मा का, पर मानता नहीं भक्ति को। अब अपने पति की पत्नी को बहुत चिंता होती है, क्योंकि विशेष रिलेशन होता है, ऐसे ही पति को अपनी पत्नी की होती है। जब पति ने नाम लिया, खैर ज्ञान हो गया, समझ में, वो न सोचेगा या भी बोली भक्तनी भी आ जाए, किसी प्रकार उसका कल्याण हो जाए, नाम ले ले। और पत्नी ने ले रखा, तो उसकी पहली ये होती है कि मेरा पति भी नाम ले ले, इसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अच्छी वस्तु स्वयं मिल जाती है तो अपने पति या पत्नी को आदमी सहयोग देता है, उसमें शेयर करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते थे उस चंद्र विजय को कि राजा नाम ले ले, भक्ति कराया करो। तो वो कहता था, जी आपके तो नियम बहुत तगड़े हैं, मेरा अपना नियम है, मन तो पार्टियों में जाना पड़े, बड़े गुट्टी छुट्टी लानी पड़े, राजाओं के पास साथ मीटिंग होती है, तो मेरे इतना नियम है, बाकी तेरी चेली ने मैं नटता ना, ये कितना धर्म करो, कितना पुण्य करो, और किसी तरह भंडारे लाओ, मैं इसको मनाने करता। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि करुणामय जी ने कहा कि राजन ठीक है, पार्टी में जाना कोई मना नहीं करते आप, हम आपको किसी मीटिंग में जाओ, कोई कार्य अवश्य जाना भी पड़ता है, तो वहां गुट्टी के अलावे काजू खा ले, किसमस खा, सेब खा, संतरे खा, खीर हलवा खा, पूरी खा, इस जहर ने क्यों पीवा तू? बोलो ना बस महाराज, मैंने ना कहे। दूसरी तीसरी बार जब परमात्मा ने फिर उसको कहना चाहा रानी की प्रार्थना से, चंद्र विजय ने बोला बाबा जी मेरे ताई आज के बाद भक्ति के बारे मत बोलना, और तेरी रानी ने मैं मना नहीं कर, तेरी चेली ने मना नहीं करता, चाहे कितना भंडारा करे, चाहे सारा खजाना खाली कर दे, ये मेरी अंतिम आदेश है, मेरे ती भक्ति के बारे मत बोलना। अब परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप ते हरिचर्चा ना बावे, हरिचर्चा ना सुहावे, कह उंग कह उठ चले ना और बात चलावे, तुलसी पिछले पाप ते हरिचर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भूख विदा हो जावे। जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उसको पापों का प्रभाव इतना जबरदस्त हो जाता है उस प्राणी के ऊपर, जैसे बुखार मलेरिया बुखार वाले व्यक्ति को जबर जिसका हो जाता है, उसको रोटी अच्छी नहीं लगती, मनुखा दा किशमिश भी कड़वी लगती है, ना किशमिश कड़वी है, ना रोटी कड़वी है, ना मनुखा दाह कड़वी है, ना सेब कड़वी है। उसके बुखार ने शरीर की व्यवस्था ऐसी खराब कर दी कि उसने मीठी वस्तु भी कड़वी लगती। तो ऐसे ही जब पाप बढ़ जाते हैं प्राणी के, राम नाम की मनुखा दाक उसने कुनीन कैसी लगे, लेकिन उसका इलाज भी यही है कि रह रहकर उस कुनीन कड़वी होती है, रोग काटने के लिए कुनीन ही खानी पड़ती है, ना चाहते हुए भी फांका मारना पड़ता है। ऐसे ही इस परमात्मा की चर्चा ना सुहावे तो भी बार बार सुननी ही चाहिए, ये कुनीन का काम करेगी और रोग काट देगी, पाप नाश करेगी। लेकिन राजा ने ये बैन ला दिया कि मेरा आगे चर्चा ना करना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब रानी को ऊपर मानसरोवर है कि यहां पर इस काल के लोक में, उस मानसरोवर पर छोड़ दिया, वहां मानसरोवर में स्नान कराया जाता है, वो लास्ट शरीर वहां छोड़ा जाता है, कैवल्य शरीर होता है, फिर ओरिजिनल शरीर आत्मा का उसको प्राप्त हो जाता है। तो वहां कहा कि बेटी अब तू बता दे, तेरे मन में कोई इच्छा तो नहीं है? अब इंद्रमती कहती है महाराज वैसे तो आपकी ने ऐसा ज्ञान दे दिया, मुझे कोई इच्छा नहीं। ना बेटी फिर भी बता, परमात्मा चाहो थे अपने मुंह तक कह दे एक बार, उनको तो मालूम था कि थोड़ा रह रहा कचरा। न्योबली जी ना बता बता कोई बात है तो। न्योबली जी और तो मैंने कोई ममता कोई ना, मेरा पति है ना बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा व्यक्ति राजा, मेरे को कभी मना नहीं किया, कितना मैंने दान किया, कितना भंडारा कर दिया, और आप भी मुझे उसी के कारण मिले हो, नहीं तो आजकल के पति से निकम्मे हैं, अपनी पत्नी ने झाखड़ भी ना दे बाहर की तय, ना गैर पुरुष ने घर मान दे, और मेरा पति बहुत बढ़िया था। हे गुरुदेव उस पर भी दया कर दो, वो पार हो जा। परमात्मा बोले बेटी मन मन में सोचा तो तेरे आज्ञा में कितना रो लिया, उसने कम्मा न मानता ही नहीं, ये क्यों करके करूं। नो बोला फिर तू आने दो चार वर्ष यार रहे इस मान सरोवर पे। अब परमात्मा जान गया कि यह भी कमजोरी है, अब यह कह जरूर से संवार के बात न, पर यह भी कमजोरी है। एक बुढ़ा आदमी था बुजुर्ग, और डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर जी से कहा कि डॉक्टर जी मेरे जो ना शर्म में दर्द रहे से। डॉक्टर ने देखा अस्थिपिंदर साहब रहा बुढ़ला कति कमजोर, ने बोला बाबा कमजोरी है बुजुर्ग या कमजोरी है, यानी वीकनेस है तेरी बॉडी में, बूढ़ा शरीर है। बोला अच्छा, मैं उठू होना जब खड़ा होता हूं चक्कर आता है। डॉक्टर बोला भाई कमजोरी है। ने बोला जी मैं मेरी पिंडिया में भड़क रहा है, पिंडलिया में। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब बूढ़ा बोला तो डॉक्टर है गम चक्कर है, किमे भी है कमजोरी है कमजोरी है, तो यही बात जाने है और कभी जानता है ना। अब डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्यों कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे, छो आया ना तुमने, ये भी लक्षण कम वीकनेस के है। परमात्मा कबीर जी कहने लगे उस लड़की के बारे में, सोचने लगे इंद्रमती के में, कि अब ये कह रही है ना मेरा पति रहस्य से आ जाए तो बहुत अच्छा हो, तो ये अभी कमजोरी है इसमें या पैर ओढ़ना दे इसने। परमात्मा नवले में जाता हूं, पर क्या हुआ, कबीर जी ने कहा कि बेटी अब वो दो लगभग 90 वर्ष का हो चुका है, अब उसकी मृत्यु होगी और उसकी वो दुर्गति होगी, देखेगा उसको जनता देखेगा। अब राजा क्या हुआ, रानी की मृत्यु के एक महीना लगभग कुछ दिन पश्चात वो राजा बाहर से आया, हाथी से नीचे उतरा और चौक में आते ही चक्कर आकर के गिर गया, अचेत हो गया। अब वो टाइम आ गया उसकी टिकट कटने का। परमात्मा कहते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा बरना रे। परमात्मा कबीर जी की वाणी में है कि तूने सोचा मेरे न्यू ठाठ रहेंगे, क्योंकि अच्छे घर में भी सुख है, पैसे भी हैं, गुट्टी लाने भी पूरा व्यवस्था है, तूने सोचा न्यू ठाठ रहेंगे, ये तो तेरा समय इतना है संस्कार तभी तक रहोगे और फिर यह मृत्यु होगी, सदा नहीं रहेगी ऐसे ये ठाठ। वैसे तो जैसे बालक है फिर युवा हुआ, जवान जवानी भी सदा नहीं रहती, फिर वृद्धावस्था आती है और वृद्धावस्था तो फिर जी क्या झाड़ हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि सदा नहीं निभाएगी ऐसी, तो सोचा मेरी ऐसे निभाएगी हरदम लेखा बरना रे। अब क्या हुआ, यम के दूत आगे और सूक्ष्म रूप में अंदर से उसकी जुबान बंद कर दी, अचेत कर दिया, उसको इतनी पीड़ा दे रहे हैं, उसको मार मार कर लट भाले ठोक रहे हैं उसके उस जीव को उस शरीर छुड़वाने के लिए। अब कोई किराए के मकान पर भी रहता हो ना, अपना मकान तो बहुत बड़ी चीज होती है, किराए के मकान पर भी कोई ले रहा और एकदम मकान मालिक कह दे इसने कल खाली कर दे, वो खाली नहीं करे, तोड़ा है ने कहा देखूंगा, दुख होता उसको बड़ा, ले अच्छा सेट हो रहा था ये तड़के फिर कल फिर उठाने पड़ेंगे बर्तन, तो वो भी ना छोड़कर राजी किराए वाला भी तो, और इसमें तो यू परमानेंट मान रहे हम शरीर ने, ये तो छोड़ना बड़ी मुश्किल से, तो उसके लठ मार मार के भाले ठोक ठोक के अंदर से सूक्ष्म शरीर में पीड़ा बहुत होती है, तो उसको परेशानी पैदा कर रखी और वो अंतिम सांस गणे ने खिंच खिंच कर राजा और टट्टी और पेशाब सपला तो उनकी दोनों निकल गई उस राजा की। अब परमात्मा ने कहा रानी देख बेटी उतरे उस शेर की दुर्गति हो रही, जब तराम नाम लिया नहीं अब के बिरान मिट्टी हो रही है बेटी, के करानी दुनिया मानती नहीं, जनता का के करूं मैं। अब रानी ने देखी जब अपने पति की दुर्गति, आंखों में पानी आ गया, कहने लगे भगवान अब आप जानो आपका काम जाने, बतेरा आपने बहुत समझाया मैंने भी बहुत कहा पर नहीं मान्या, वो देख लो दया कर दो मेरे दाता आपका बच्चा है। अब परमात्मा ने बेरा था या मरेगी इसकी गेला, जइयो छुट्टेगा जो पार पड़ेगी इसकी नातिया भी रह जाएगी यहीं पर, तो वहीं से परमात्मा आए सेकंड के अंदर पहुंचूंगा क्षण एक में, एक क्षण में वहां आकर खड़े हो गए चौक में। यम के दूता ने देखे भगवान आगे, वो उड़ गए जैसे चील, ये गिरद उड़ जाती है मुर्दे पर, तय ये पक्षी कौवे उड़ जाते हैं दूर आकाश में खड़े हो गए। अब यम के दूत उसका टीटवा दाब रहे थे, वह छूटते हो राजा उसमें आ गया और देखा सामने गुरुजी खड़े हैं, रानी के गुरुजी खड़े, चरणा में पड़ गया और वो राजा ने दिखाई दे वो खड़े यम के दूत, और ये तो इनसे डर कर गए हैं, पैर पकड़ लिए माथा टेक है, मन बचा लो गुरुजी बचा लो महाराज मेरी रक्षा करो, न बोला रपला तूने इबकित गई तेरी वह गुटी छुटी, कितना समझाया था तने एक नहीं मानी, और मैं जाऊं इतना ते खांगे देख वह खड़े बोले हे भगवान तुम ना जाइयो, हे गुरुजी यहां से मत जाना मेरी रक्षा करो मेरे दाता। परमात्मा बोले भाई मैं कब तक रहूंगा तेरे पास, कुछ भी करो। परमात्मा बोले भाई आज फिर वही बात आज है, नाम लेना पड़ेगा तने, नाम ले लूंगा जी, मैंने नाम दे दो दीक्षा दे दो मेरी जान बचा दो, आज नाम उसने मीठा लग गया जब देख लिया ना टिकट भी कट ली, रात भी गया त्री दुर्गति भी करेंगे ये गेर के कुटेंगे उड़ा, तो उपदेश ले लिया। न्यो बोला बेटा 4 साल तेरे मैं अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं, तेरी उम्र नहीं है, अरे 4 साल में जब भक्ति डट के नहीं करी ना ये फेराऊंगे यम के दूत। अब उसने तो आंखें देख लिया नजारा, नाम लिया खूब डट के भक्ति करी, सब बच्चों को छोड़ दिया राजपाट। 4 साल के अंदर खूब भक्ति की परमात्मा की। कहते हैं जीवन का थोड़ा ही बला दे सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवन लिख देना को, तब परमात्मा ने उन दोनों का मोक्ष किया। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रजनहार कुल मालिक, कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुन रहे हो। परमात्मा की रजा के बिना ये कोई भी प्राणी सत्संग में नहीं आ सकता। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। परमात्मा कबीर देव जी हमारे कुल मालिक हैं, सभी आत्माओं के एकमात्र वो संरक्षक हैं, जनक हैं। वही हमारे दुख में दुखी होते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं। हम काल की जेल में फंसे हुए हैं। इस काल ने ऐसी जेल बना रखी है कि बगैर किसी हथकड़ी बेड़ी के हम अब पर बंधे हुए हैं। कर्मों के बंधन से हमें जकड़ रखा है और यहां प्रत्येक प्राणी को मां कष्ट दे रखे है। कोई भी जीव सुखी नहीं। आप देखते हो चींटी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सारा दिन पेट के लिए ही इधर से उधर भटकते रहते हैं। और इसी प्रकार मानव ये भी एक जीव है, ये भी केवल पेट के लिए सारा जीवन व्यतीत कर देता है। सुबह उठकर जाता है, सैकड़ों झूठ बोलता है, ना जाने कितने पाप करता है, और शाम को पढ़ के सो जाता है, उठ के फिर चल देता है, शाम को फिर सो जाता है, उठ के फिर चल देता है। एक दिन इसकी मृत्यु ही हो जाती है, इसका पेट गुजारा ही पूरा नहीं हो पाता। ये के जीवन है, कभी विचार करके देखा करो, ये कोई जीवन है? ये किराए का शरीर मिला, इसमें दिन में 2-3 बार के में डालेंगे जो काम करेगा ना, तो शरीर जवाब दे जा। आप पे कमाओ, आप पे इसमें डालो और फिर इससे पाप कमाओ। देख कैसे उल्टे काम लगा रखे हमारे गोकाल भगवान ने। ये तो परमेश्वर आते हैं, हमारी बुद्धि को सीधा करते हैं, हमें तत्व ज्ञान देते हैं कबीर भगवान जी, तब हमारी आत्मा इस काल के जाल को समझकर फिर अपना आत्म कल्याण का कार्य प्रारंभ करती है। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना सतयुग त्रेता द्वापर तक की कथा सुनी, परमात्मा कैसे कैसे आते हैं। जब भी ये प्रभु आते हैं एक शिशु रूप धारण करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं और वो अपना तत्व अपनी महिमा की वाणी अपना तत्व ज्ञान स्वयं ही प्रकाशित करते हैं, स्वयं ही प्रचार करते हैं। कबीर देव जी कहते हैं कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। ये चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद श्याम वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद परमात्मा कबीर देव की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में परमेश्वर कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म उस पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। इसमें केवल ब्रह्म तत्व की विधि है प्रभु की भक्ति की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में उसमें कहा है कि ओम कर्तु समर कल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमन करो, एक विशेष तड़फ के साथ, विशेष कसक के साथ सिमन करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानकर इस ओम नाम का जाप करो। इस ओम नाम के जाप से क्या उपलब्धि होगी, ये प्राणी ब्रह्म लोक में चला जाएगा, और ब्रह्म लोक गीता जी ध्यान राठ के श्लोक नंबर 13 में भी यही कहा है, गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके भूत की तरह ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमन करता हुआ जो अंतिम श्वास तक सिमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति यानी ओम नाम से जो लाभ होना है वो प्राप्त होता है। ओम नाम के जाप करने वाला कहां जाता है, ब्रह्म लोक में जाता है। गीता जी ध्यान मराठ के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती माने वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आ जाते हैं अपने पुण्यों के क्षीण होने पर। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्म से लाभ पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्म लोक में गए वहां अपने पुण्यों को क्षीण किया वापस फिर आ गए। अब जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना, जिस वेद से मैं मिलूं, परमात्मा कहते हैं जौन से वेद के द्वारा, वो कौन सा वेद है, सूक्ष्म वेद है, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है वो, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो अभी तूने श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान सुना, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई केवल व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई देवताओं की पूजा करता है, और अपनी साधनाओं को वो पाप नाशक जानते हैं, आप अपनी साधना को सभी ये समझ कर रहे हैं कि ये हमारे को सुख देगी, हमारा पाप कर्मों का नाश करेगी, नहीं तो उनको करे नहीं कोई, जब उसको ये पता लग जाए ठीक हो नहीं, उस अज्ञान सोच के आधार से वो ऐसा कर रहे हैं। तो गीता जी ध्यान मराठ के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार और बहुत सा विस्तार से अनुष्ठान यज्ञ यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, और उसको भी तो कर्म जान यानी वो क्रिया करने से, काम करते करते काम करने से संपन्न होती है, उसको जानकर फिर तो पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करेगा। अपुण्य आत्माओं, यहां पर एक गलती की है इन्होंने, अनुवादकर्ताओं ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, इसमें ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे का इन्होंने कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ तो कर दिया वेद और मुखे कर दी वाणी, ये गलत अनुवाद है। इन्होंने ही गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ किया सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस ब्रह्म को यानी तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्णों से जो परिचित हो जाता है वो फिर यहां से जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु वाले दुख से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इससे मोक्ष पाने की ही चेष्टा करता है और अन्य किसी वस्तु की चाह वो नहीं रखता। तो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो कौन है, वो तत्ब्रह्म जो ऐको कौन सा प्रभु है, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा सिमरण कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और मेरा जाप कर। अपना जाप आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में बता रहा है कि मेरा ओम जाप है, उसको कीजिए। अपनात्मा वो सत्रहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में बताया, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर आठ नौ दस में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है उसको प्राप्त होता है उस भक्ति की शक्ति से। उसका मंत्र सत्रहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध है समर्थ है। वहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ स्वयं ही अनुवाद करता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक कोई उठाकर देख ले गीता जी, उसमें इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है ब्रह्मणे का अर्थ। और चौथे अध्याय के बत्तीसवें श्लोक में ये विचलित हो गए, यहां इन्होंने वेद अर्थ कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। यहां लिखना था कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में यह बहुत विस्तार से लिखा हुआ उसके विषय में। फिर उसके विषय में था चौथे अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में कि तू उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस सूक्ष्म वेद में है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़कर उनकी विनम्र भाव से प्रसन्न करने से सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत आपको उस तत्व ज्ञान का भेद बतावेंगे। तो इससे सिद्ध है कि तत्व ज्ञान जो है उसके विषय में है, ये गीता वाले ज्ञान से संबंध नहीं है इसका। गीता जी का ज्ञान तो बता ही रहा है, वो कह रहा मेरे पास ये पूरा नॉलेज नहीं है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। इस प्रकार वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, तो परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से यानी जौन से वेद से मैं मिलूं, सूक्ष्म वेद से वो तत्व ज्ञान से, जो वेद माने ज्ञान भी होता, जौन से ज्ञान से मैं मिलूं उसको ये वेद जानते नहीं। परमात्मा स्वयं ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार करते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, अब परमात्मा की पहचान करने के लिए हमने वेदों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी इन पवित्र चारों वेदों को यथार्थ ज्ञान युक्त सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं। सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं कि वेद जैसा ज्ञान नहीं, और पुराणों को भी सम्मान दृष्टि से ही देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक विशेष आदरणीय सदग्रंथ पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों का है। अब जो हमें ये तीनों सदग्रंथ तीनों शास्त्र हमें जो मार्गदर्शन करेंगे तो हमें स्वीकार्य होना चाहिए, और फिर भी हम नहीं मानते फिर हम भक्ति नहीं करना चाहते, फिर हमारा उद्देश्य परमात्मा पाना मोक्ष करना नहीं है। परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने अर्ता की संगत है प्रभु स्वप्न बिना दे। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सतलोक वासी है। सतलोक वो स्थान है जिसको शाश्वत स्थान भी कहते हैं, सनातन परम धाम भी कहते हैं, जिसको सचखंड भी कहते हैं। और परमात्मा वहां सतपुरुष, सतपुरुष माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु परमात्मा, अविनाशी परमात्मा सतपुरुख। अकाल मूर्त का अर्थ भी यही है, जिस साकार प्रभु का नाश ना हो, मूर्त माने साकार। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूप माने अमर, राम माने परमात्मा, अमर परमात्मा, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता है। तो हमने उस अमर पुरुष को समझना है। परमात्मा कहते हैं सतलोक से हम चलाए काटन यम की फांसी, अमर लोक से हम चलाए, सतलोक से हम चलकर आते हैं और इस काल की फांसी, काल का बंधन, कर्म बंधन जो हमारे जीवों को फंसाए बैठा है उसको काटने के लिए मैं आता हूं। अब सबसे पहले हमने अपने इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और फिर उनको अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाता है। परमात्मा परमेश्वर का सतलोक से यहां आगमन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रचार ही होता है। उसके लिए हम अपने पवित्र वेदों का सहारा लेते हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 महर्षि दान सरस्वती द्वारा प्रकाशित अनुवादित लिखा है इन्होंने, ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली 2। फोन नंबर इतना है, फैक्स नंबर ये है, ईमेल इनकी इतनी है। ऋग्वेद आर्य भाषा वास्य महर्षि दान सरस्वती कृत, वैसे दानंद का अनुवादित अनुवाद किया हुआ नहीं है, फिर भी ये तो झूठे गणे थे, फिर भी हमने अपना उद्देश्य पूरा करना है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इसमें हम देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का और मंत्र नंबर 18 में देखते हैं परमात्मा कहां रहता है। ये देखिएगा, इसका नीचे है, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96। ये कल प्रिंट है, यहां पर 334 है और ये 335 है, यह मिसप्रिंट हो रहा है, 335 है ये पृष्ठ और हमने 18वां मंत्र देखना है। ऋषि मना ये ऋषि कर्त सवरसा सहसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोम विराजमान अनुराजती सतूप। ये वैसे तो 16वें मंत्र से ही बहुत अच्छा वर्णन है इसमें। हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो नाम, ये नाम संस्कृत में है, गुहम चारु नाम, गुहम माने गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम, आपका जो गुप्त सबसे श्रेष्ठ नाम है उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ ये है, ये परमात्मन इन्हीं विद्वानों के द्वारा अनुवादित में बहुत कुछ मिलेगा। सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो जो तुम्हारी संज्ञा है, ये कहना चाहिए था नाम माने जो तुम्हारा नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, गुहम माने गुप्त, आपका बहुत रहस्य में जो सर्वोपरि सबसे उत्तम सबसे ऊपर, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम, नाम लिखना था जो तुम्हारा, तुम्हारी संज्ञा नहीं, जो तुम्हारा नाम है आप उसका ज्ञान कराए। बस अब यहां देखिए 17वें में उसका ज्ञान नाम लिया है, बताया है शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीन मरुतो गणेन कवीर गिर भी, कवीर गिर भी काविना कवीर संत सोम पवित्रम अत्यति अत्यति रेभन। इसका अर्थ बनता है शिशुन जगानम, जय माने प्रगट होना, ज्ञानम माने जानबूझ के, सब इच्छा अपने सुनियोजित तरीके से शिशु माने शिशु रूप धारण करके, वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके और प्रगट होता है और उस समय अपने बहुत से गणेन माने समूह को मरुत माने अच्छी आत्मा यानी बहुत से वो भक्तों को जो परमात्मा की तरफ में होते हैं उनको मार्गदर्शन करता है। कैसे करता है? कबीर गर्भी गिर भी, कबीर गिर भी कावेना कवि संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन, इसका सीधा सारथ बनता है कि जो शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा प्रत्येक युग में वो परमात्मा कबीर है। कबीर ये कवि बोलते हैं इसको, हम इसको कबीर देव बोलते हैं, कबीर देव कवि साहब मान ले, इसका अर्थ कवि ही मान ले, कवि साहब हम उसको कवि कबीर साहब हम लिखने लगे कबीर साहब। वो कबीर परमात्मा अपनी अपने ज्ञान को कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा कवि न माने लोकोक्तियों के माध्यम से और पवित्र तिरेवन उच्च बड़ी पवित्रता के साथ ऊंचे स्वर में अत्यधिक ऊंचे स्वर में यानी गरज गरज का बोलता है और वो संत सोम वो संत या ऋषि रूप में प्रगट वो अमर पुरुष वो कबीर परमात्मा होता है। इन्होंने यहां देखो कवि का इस कबीर गिरभी को दो भागों में कर दिया, कबीर के अपसर्ग लगा दी कवि बना दिया, कवि लोग लिख दिया गिरभी माने वाणी द्वारा, हमने इसका लिख दिया कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा अत्यंत ये देखो रेभन माने रेभन सन गर्जता हुआ रेभन, इस सन को यहां ले आइए तय और सय को न बना दिया सन और यहां इसके जोड़ दिया नहीं, कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन, वो संत या ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा जो अपनी अमरवाणी को कबीर वाणी द्वारा कबीर वाणी द्वारा कविता कविताओं से काविन्या यानी लोकोक्तियों के माध्यम से शब्दों के माध्यम से श्लोकों दोहों के माध्यम से बोलता है, तो वो कबीर परमात्मा अमर परमात्मा है जो ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी वाणी बोलता है। इन्होंने तो वैसे ही तुक्के मार रखे हैं, शिशु का अर्थ रखा सैति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगत जगदीति शिशु परमात्मा, शिशु परमात्मा उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है जगानम माने जो सदा प्रकट है। अरे सीधा सा रथ है शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती विहीना वहीना मृतो गणेन, वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है अपनी विशेष उद्देश्य को लेकर आता है, तो वो उसमें बहुत ही पवित्र ढंग से अपनी वाणी का वर्णन करता है और जो परमात्मा की आग जिसको लगी हुई है ब्रह की अग्नि उन बहुत बड़े बड़े समूह को जाकर के संबोधित करता है। किस तरह करता है? कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, और वो कबीर वो जो कवि जिसको तुम कवि कहते हो वो कबीर देव है, वो अमर पुरुष है, वो संत रूप या ऋषि रूप में प्रकट और अपनी वाणी को ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाता है। यहां देखो ऋषि मना ये ऋषि कर्त सवरसा सहसरणीथ पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिसे शिष्य संत सोम है विराजमान अनुराजति सतुप, सतुप का अर्थ होता है गुंबज में, विराज माने विराजमान है, अनुराजती माने बहुत ही तेज उस तेजो में शरीर से युक्त है, वो तृतीयम धामम तीसरे धाम में विराजमान विराजमान है विराज विराजम विराजमान है ऋषि मना ये ऋषि कृत जो संत या ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा आता है ज्ञान प्रचार करने के लिए, उस ऋषि कृत उस संत के द्वारा अनुवादित उस संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा अनुवादित बोली गई वाणी, उस परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी हजारों हजारों की संख्या में बोली गई वाणी, अब वो जो ऋषि कृत उस ऋषि या संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी तत्व ज्ञान में हजारों की संख्या में असंख्य वाणी बोली जाती हैं, और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी वो परमात्मा प्राप्त करता है और वो तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है। एक तेजो में शरीर युक्त और एक बहुत बड़े गुम्बज में, स्तूप माने गुम्बज में। अब आप आराम से पढ़ोगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96। अब कहते ना करत कर्तव्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। अब हम इसको आराम से पढ़ लेंगे, संस्कृत के कोई पाठ थोड़ा ही है। ऋषि मना ये ऋषि कर्त सवरसा सहसर अनिथ पदवी कवि नाम। अब वो परमात्मा जो ऊपर कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिर भी माने ये दो वाणी द्वारा बोल रहे हैं, कवि माने कवि लोग कर दिया, और वो कबीर वाणी गिर भी कबीर वाणी द्वारा काविना कविताओं के माध्यम से वो कबीर परमात्मा अपने अमर वाणी को ऊंचे स्वर में बोलता है, वो परमात्मा होता है, वो संत रूप में प्रकट अमर पुरुष होता है। और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी ऋषि मना ये ऋषि कर्त सवरसा, उस ऋषि द्वारा यानी संत रूप में प्रगट, ऋषि रूप द्वारा रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा हजारों वाणी सहस्रणी था माने हजारों वर्षों की संख्या में वाणी जो बोली जाती है वो ऋषि मना यानी साधु स्वभाव के यानी भक्तों के लिए सवरसा बहुत ही आनंददायक होती है। और वो परमात्मा इसी कारण से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पदवी प्राप्त करता, उसको कवि कहने लग जाते हैं, इसका सीधा अर्थ है। और वो तीसरे धाम में महिष है, महिष है माने उस बहुत दृढ़ यानी अमर धरातल सतलोक को स्थापित करके, शिष्य यानी स्थापित करके सतलोक की रचना करके उसमें वो संत सोम, वो परमात्मा जो संत रूप में प्रकट होता है, वो अमर पुरुष विराजम वहां विराजमान है, और उस स्तूप माने उस एक गुम्बज में तेजो में श्रीयुक्त विराजमान। इनका अनुवाद देखना 336 पृष्ठ पे इन्होंने अनुवाद किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र ये 18 चल रहा है। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उस उद्देश्य से जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, इन्होंने देवयान और पितरान इन दोनों से पृथक तृतीयम धाम तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला है। कोई बात हो ज्ञान योगी का क्या जिक्र था, भगवान की महिमा गान लग रही है, ये अपनी घुसेड़ अपनी ओछी सोच घुसोड़ दी दयानंद वाली कि दयानंद नहीं मानता कि वो कितना एक स्थान पर परमात्मा विराजमान। अभी देखिए सिद्ध होगा विराजमान है, सत्वमान नहीं, इसका अर्थ है सतूप माने गुम्बज में प्रकाश करने वाला अनुराजती विराजम माने विराजमान है, बस इतना ही लिखना था। ऋषि कृत का नकेरत कर दिया सब ज्ञानों का प्रदाता, कोई बात हुई ऋषि कृत माने जैसे कहते हैं जैसे यहां लिखा इन्होंने दानंद ऐसी दानंद कृत यानी दानंद द्वारा किया हुआ अनुवाद लिखा है, वैसे ये अनुवाद दानंद का नहीं है। ये देखो इसी के इस ऋग्वेद के 9-10 मंडल का इसने नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो लिखा इसको देखना है। महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी महर्षि दानंद द्वारा किया हुआ अनुवाद इस कृत मन और यहां के अड़ंगा कर दिया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में। यह जो ऋषि कृत सब ज्ञानों का प्रदाता सवरसा सूर्य आदि आदिकों को प्रकाशक, कोई बात हुई सवरसा वह बहुत ही आनंददायक यहां ऋषिकृत यानी उस ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा कृत सहसरणी था, देखना यहां पर ये और पढ़ सहसर सहसर अणी था, अनंत प्रकार की सत्वनीय है, सत्वनीय है, इसका अर्थ है सहसर अणी था माने हजारों वाणी वो परमात्मा बोलता है। और कवि नाम पदवी जो क्रांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, ले अड़ंगा कर रखे। अब हमने यहां से सिर्फ इतना ही लेना है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है और वो कबीर है, शिशु रूप धारण करके वो प्रकट होता है। जब धीरे धीरे बड़ा होता है अपने उद्देश्य को के लिए जो जिस उद्देश्य से आता है वो फिर अपने उसी को पूरा करता है, हजारों की संख्या में वाणी बोलता है जो उस ऋषि मना ऋषि स्वभाव वाले साधु संत भक्तों के लिए उनके द्वारा बोली गई वाणी बहुत ही आनंददायक होती है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 18 के अनुवाद में एक अड़ंगा अड़ा दिया ज्ञान योगी के तीसरे धाम में विराजमान जो ज्ञान योगी। ज्ञान योगी का मतलब परमात्मा ही महिमा चल रही है। अब आगे इसका क्या है कि दानंद के द्वारा अनुवादित नहीं है, इसके विषय में लिखा है 9वें और 10वें मंडल के विषय में, 1 से 6 तो दानंद जी कर गए अड़ंगा, इसका अनुवाद अड़ंगा, और 7 से लेकर 10 तक 7वें लेकर के बारे में लिखा किसने करा, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी दो तीन आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से अनुवाद किया। अब जो 8वें अध्याय का 86 ऋग्वेद नंबर 9 का मंत्र अनुवाद सूक्त नंबर 86 का जो अनुवाद है और 82 का, ये किसी और ने किया है जिसकी बुद्धि मालिक ने खोल दी थोड़ी सी और उसने कुछ कुछ ठीक लिख दिया। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 26 नंबर मंत्र में, 86 का 26 नंबर मंत्र है, इसमें बहुत ही स्पष्ट किया है यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमानों वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण करता है, उनके पाप नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि वहां परमात्मा जैसे भी आपने पढ़ा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 18 में कि वो परमात्मा सतलोक के अंदर तीसरे मुक्तिधाम में, प्रथम लोक था यो काल का, दूसरा ये ब्रह्म परब्रह्म का और तीसरा सतलोक है जो सतलोक से ऊपर के जितने लोक हैं 3 लोक और वो सभी एक ही धाम माना जाता है सथाई अविनाशी धाम। तो वो तीसरे मुक्ति धाम में वो परमात्मा रहता है वहां एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, गुम्बद में रहता है, तेजो में शरीर युक्त है और परमात्मा ने लिखा है अपनी महिमा बताते हुए कि वो वहां सतपुरुष रूप में हम रहते हैं तो सतपुरुष के एक रोमकूप बोलते हैं ये छिद्र बालों का, शरीर के बाल का दो छिद्र है, एक रोमकूप का इतना प्रकाश है करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा तो भी परमात्मा के रोमकूप का तेज ज्यादा लगे। अगर वो एज इट इज यहां आ जाए तो हमारी उल्लू की इतना आंखें बंद हो जाए हम देख नहीं सकते चरम दृष्टि से, दिव्य दृष्टि हमारी काम नहीं कर रही क्योंकि हम इतनी भक्ति कर नहीं पाए हैं। तो इसलिए परमात्मा अपने रूप को सरल करके यानी हल्के तेज पुंज का रूप बना के, तेज पुंज अन्य दे धर कर इस विधम को भेंट ही, और वह सूक्ष्म वेद बता रहा है वही ये वेद इसका वर्णन करे। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, संकटों का नाश कर देता है, और उन पुण्यात्माओं को पवित्र करता हुआ, उन भक्तों को पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, निराकार की तरह गया, जब ये वेद बताओ तो उसका रूप है, सरल करता हुआ, और वह कांति में परमात्मा इन लिख दिया, कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये यहां पर लिख रखा है इसमें मूल संस्कृत में, कवीर अतो न कर्म प्री वारम अर्षति, ये कवीर अतो इसका अर्थ लिख दिया, कवि का अर्थ कर दिया इन्होंने, कवीर बना दिया, कवि का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। अब पुण्यात्मा थोड़ा सा यह वर्णन करना पड़ेगा, जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, और जहां भी इस यजुर्वेद की महिमा गा रखी हो और केवल यजु भी लिखा हो, दो मात्रा ला के अपसर्ग लगा के ये रे को दो मात्रा बना देते हैं, तो भी लिखना पड़ऋगा वो यजुर्वेद। जैसे महर्षि दानंद ने स्वयं अनुवाद किया 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र का, 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र का अनुवाद किया है, और उसमें इसने लिखना पड़ा है, ये देखो अर्थ 36वां अध्याय है, 6300 अध्याय आरंभ, इसके प्रथम मंत्र में ये लिख रखा है, रचम वाचम पर पधे मनो यजु पर पधे। अब इस यजु का अर्थ इन्होंने यहां किया है, यहां किया है कि ऋग्वेद रूप वाणी को प्राप्त हों, मन मनन करने वाले अंतकरण के तुल यजु, ये यहां केवल यजु लिखा है इस मूल संस्कृत में यजु, तो इसका अर्थ इन्होंने यजु का अर्थ लिखा है, यजु यजुर्वेद लिखा, यजुर्वेद बस यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार यहां हमने इस कवि का अर्थ ऋग्वेद अब हमने फिर शुरू किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर हम चल रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। इन्होंने वह परमात्मा कवि का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ, हम इसको लिख दें कबीर देव, यहां कबीर देव लिख दिया बस कबीर देव, चलो कवि का अर्थ कवि मान लिया, हम कवि साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, नोट कवि साहब, कवि कबीर साहब कहते हैं, तो वो परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी जैसे बिजली एक पल में यहां आ जाती है, आकाश की बिजली गिरती है सेकंडों में, और वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय माने श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखो इसमें कमाल कर दिया सातवें में, ये तो इन्होंने वैसे अड़ंगा कर रखा, प्रेम की सैकड़ों धाराएं, ये कुछ नहीं है, परमात्मा को प्राप्त होती है, यहां हमने ये देखना जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, यानी तेज तेज पुंज दे धरके, तेज पुंज का रूप बनाकर जो परमात्मा आता है उसको बुद्धि वृत्तियां विषय करती मर्जमती, यानी वो अच्छी तरह अच्छी आत्मा अच्छी तरह जान सकती है। जो परमात्मा ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, हो गया ना स्पष्ट, जो परमात्मा ध्यूलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां परमात्मा बैठा है।